मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 11 जून 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 10 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान प्रिय साथियों के नाम हैं आलोक रंजन राय गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, बबलू चौहान चडोल जिला नीमच मध्य प्रदेश से, काजल बाथरे होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, प्रांजल पारिक बस्सी जयपुर राजस्थान से, अमित कुमार बांका बिहार से, सौरभ तिवारी सीतापुर उत्तर प्रदेश से, नैवेद्यम भिलाई छत्तीसगढ़ से, प्रदीप कुमार महाली बाड़ीपाड़ा उड़ीसा से, शुभम त्रिपाठी बहराइच उत्तर प्रदेश से और आशीष कुमार अग्रहारी रॉबर्ट्सगंज उत्तर प्रदेश से। तो आलोक, बबलू, काजल, प्रांजल, अमित, सौरभ, नैवेद्यम, प्रदीप, शुभम और आशीष, आप सभी 10 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय में हम लोग शंघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी न्यूज एनालिसिस को देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे एक अपील करने जा रहा हूं। आप इसे अपील ही कह लीजिए, या निर्देश कह लीजिए, या गाइडेंस कह लीजिए, या प्रार्थना कह लीजिए, या सलाह कह लीजिए। और वो ये दोस्तों, पिछले साल मैंने YouTube पर AFEIS ने एक मेरा प्रोग्राम डाला है, वो है सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो 11 मुख्य स्तंभ होते हैं, 11 स्तंभ, 11 पिलर्स जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे। और सच पूछे तो इसके तहत मैंने बहुत मेहनत करके उन 11 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था जो आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए मजबूत बनाती है, यूं कह लीजिए कि जो जरूरी ही हैं। और इसके बाद फिर इसके एक, ये तो एक प्रोग्राम है, इसके बाद फिर मैंने छोटे छोटे इस 11 में से एक एक को लेकर के फिर और 11 प्रोग्राम तैयार किए। इनफैक्ट मैंने देखा कि इस प्रोग्राम को आप लोगों का उतना प्यार नहीं मिला। खैर, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी और आपत्ति करनी भी क्यों चाहिए, वो आपका अधिकार है। लेकिन मुझे अफसोस जरूर हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण बात को स्टूडेंट या तो समझ नहीं पा रहे हैं, या समझते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं, या अनदेखी कर रहे हैं, या क्या बात है। क्योंकि वो तो बहुत ही बेसिक चीजें थी और स्टूडेंट को जानना चाहिए कि भाई वो कैसे तैयार करें अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए। लोगों का जोर किस बात पर रहता है? एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने पर। लेकिन हम अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए कैसे तैयार करें, ये हम नहीं मानते। जैसे मान लीजिए कि मैं फुटबॉल खिलाड़ी हूं, तो मैं फुटबॉल खेलता हूं, ठीक है, मैं फुटबॉल खेल करके फुटबॉल के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं। लेकिन मैं फुटबॉल अच्छे से खेल सकूं, इसके लिए भी तो मुझे अपने आप को तैयार करना होगा। लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाता। मित्रों, मेरा ध्यान अभी क्यों गया इस पर? मैं भी उसे भूल चुका था एक प्रकार से। मेरा ध्यान इसलिए गया कि मैं देख रहा हूं कि जब से सिविल सर्विस प्री के एग्जाम हुए हैं तो मुझे कुछ मेल मिले, और वो मेल एक तरह से पश्चाताप करते हुए मेल मिले, प्रायश्चित के मेल मिले। उस मेल में याद दिलाया गया कि सर, वो आपने 11 पिलर्स वाला जो डाला था, वो हम लोगों ने उस समय देखा तो था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इस प्री के एग्जामिनेशन को देने के बाद लग रहा है कि नहीं, वो कितना जरूरी है और अब हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो मित्रों, तभी मुझे भी याद आया है और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आपको भी एक बार, आप सबको फिर से याद दिला देना चाहिए। मित्रों, मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं प्रार्थना समझ लीजिए, अपील समझ लीजिए, निर्देश समझ लीजिए, आप लोगों से करता हूं कि प्लीज ये जो 11 स्तंभ वाला जो प्रोग्राम है, इसे आप जरूर देखें, क्योंकि अब साल भर आपको तैयारी करनी है, शुरुआत हो रही है। बेहतर होगा कि शुरू करने से पहले आप इसे देखें और इसके बाद फिर जो एक एक स्तंभ अलग अलग की बात कही गई है वो भी देखें, है कितने देर का, 10-10, 15-15 मिनट का है क्या। आप तैयारी के लिए इतना भी समय नहीं निकाल सकते, वैसे आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन वो पढ़ना कैसे चाहिए और अपने आप को उसके लिए आप कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए समय निकालने में आपको आलस्य क्यों आता है, नहीं आना चाहिए। तो मित्रों ये मेरी एक छोटी सी अपील है। आज के जो मुख्य विषय से पहले जो न्यूज है फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं आपको बस दो ही न्यूज है, खास नहीं है। एक तो शंघाई सहयोग संगठन के बारे में हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर के बारे में और बताऊंगा। आपको मालूम है कि कल यानी कि 12 जून को एक बहुत बड़ी वैश्विक घटना घटित होने जा रही है, आप समझ गए होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के जो हेड हैं किम जोंग, उनके बीच में बातचीत होनी है और ये बातचीत सिंगापुर में हो रही है, न तो उत्तरी कोरिया में हो रही है न अमेरिका में हो रही है, सिंगापुर में ये बातचीत हो रही है। और अखबार अभी आप देख रहे होंगे कि इस तरह की खबरों से भरे हुए हैं और चैनल्स पर भी अलग अलग ढंग से ये खबर दिखाई जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इसका जो बेस है, जो बेसिक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा है और वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, मैं बेसिक बता रहा हूं, और आप देखेंगे कि केवल इस बेसिक को जान लेने के बाद कल जो वार्ता हो रही है और वार्ता होने के बाद जो खबरें छपेंगी उन खबरों को आप कितने अच्छे से समझ पाएंगे, और साथ ही जो एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे आप उनको भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और फिर जो आर्टिकल लिखे जाएंगे वो भी बहुत अच्छे से आपकी समझ में आएगा केवल इस बेसिक को जान लेने के बाद। मित्रों सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आपको मालूम है कि जो रशिया था वो साम्यवादी देश था और जो अमेरिका था वो पूंजीवादी देश था, और पूरी की पूरी दुनिया इन दो खेमों में बट गई। कोरिया के साथ भी यही हुआ, कोरिया को भी दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, और उत्तरी कोरिया रूस के अधिकार क्षेत्र में आया, अधिकार क्षेत्र उस रूप में नहीं मतलब प्रभाव क्षेत्र में कह लीजिए, और जो दक्षिण कोरिया है वो अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में, यानी कि एक पूंजीवादी देश बन गया एक साम्यवादी देश बन गया। उत्तरी कोरिया में राजवंश का शासन था तो वो राजा जो भी है वो चलते चले गए, जिसे हम अब तानाशाह, उनकी कार्यप्रणाली ऐसी कि उन्हें हम तानाशाह के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिणी कोरिया था वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वाला देश बन गया। तो उत्तरी कोरिया ने क्या किया, चूंकि साम्यवादी देश था और साम्यवादी देश की एक प्रणाली होती है, उस प्रणाली से उन्होंने काम करना शुरू किया और अपना बहुत सा धन परमाणु अस्त्र बनाने में लगाने लगा कि हम सेफ रहें, और यह रशिया वगैरह के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों ये जो उत्तरी कोरिया है जब बहुत ज्यादा परमाणु परीक्षण करने लगा तब दुनिया को चिंता हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार में ही जापान में लोगों ने परमाणु बम की खतरनाक स्थिति देख ली थी। तो दुनिया को डर हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए और पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाए, और आप देखते हैं कि किस तरह से परमाणु अस्त्रों को रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें हो भी रही हैं, राइट। तो उसमें उत्तरी कोरिया से कहा गया कि भाई आप अपने इस कार्यक्रम को बंद कर दीजिए, तानाशाह शासक थे उन्होंने इस कार्यक्रम को बंद करने से साफ साफ मना कर दिया, और इसके कारण फिर उत्तरी कोरिया पर बहुत से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, यूएनओ ने भी अमेरिका ने भी बहुत से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। आप यूं कह लीजिए कि उत्तरी कोरिया एक प्रकार से दुनिया से कट गया जबकि दक्षिण कोरिया दुनिया से जुड़ा रहा। तो उत्तरी कोरिया की आर्थिक स्थिति भयानक रूप से खराब हो चुकी है, क्योंकि जो एक तो दुनिया से कट गया है, व्यापार वगैरह कहीं कुछ है नहीं, थोड़े बहुत से चलते रहेंगे, हालांकि चीन वगैरह जैसे देशों से उसके थोड़े से संबंध है लेकिन आर्थिक प्रतिबंध तो लगे हुए हैं, तो अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो कुछ लोगों ने कोशिश की, खासकर दक्षिण कोरिया ने कोशिश की और फिर चीन ने भी कोशिश की कि भैया बातचीत करो, अपना इस कार्यक्रम को बंद करो, देश का तुम्हारा हाल इतना खराब हो रहा है। तो अब उनके जो किम जोंग तानाशाह हैं, यंग हैं बिल्कुल, उनको ये बात थोड़ी सी समझ में आई है। बीच में बहुत ज्यादा तनाव रहा अमेरिका और कोरिया के बीच में, आपने देखा ही, उत्तरी कोरिया धमकी देता था कि मैं ये नष्ट कर दूंगा, मिसाइल छोड़ दूंगा, अमेरिका को बर्बाद कर दूंगा। तो अब जाकर के उन दोनों के बीच में ये शांति वार्ता हो रही है। इस शांति वार्ता में सीधी सी बात है कि जो मेन मुद्दा है वो ये है कि उत्तरी कोरिया से कहा जाएगा कि आप अपने परमाणु परीक्षणों को बंद कीजिए, जो भी हैं इस तरह के उनको खत्म कीजिए ताकि दुनिया में शांति कायम हो सके, आप हमारी बात मान जाइए तो फिर हम आपके ऊपर जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं उनको खत्म कर देंगे, आप भी दुनिया के मेन स्ट्रीम में आ जाइए और हमारे साथ रहिए, आराम से अपने देश को चलाइए, ये स्थिति होगी। और इसके बदले में डेफिनेटली उत्तरी कोरिया चाहेगा कि भाई उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए कि कोई उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। उत्तरी कोरिया को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि लोग उस अटैक करके उस पर अधिकार न जमा ले। तो मित्रों कुल मिलाकर के ये बेसिक है, बस इस बेसिक्स को आप ध्यान में रखिए, एक बार अगर आप चाहें तो इसे फिर से सुन ले ताकि आपके दिमाग में वो अच्छी तरह से आ जाए, और फिर आप देखेंगे कि कल की जो खबरें छपेंगी वो आपको कितनी समझ में आती हैं, कितनी नहीं आती हैं, और फिर मुझे बताइएगा भी कि सच में इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर हुआ, ताकि मैं फिर अपने डेली ऑडियो लेक्चर के जो खासकर मुख्य विषय होते हैं उनको उसी तरीके से और अच्छा से अच्छा आपके लिए उपयोगी बना सकूं। ये आपके लिए ही सबसे अधिक फेवरेबल होगा, फेवर में होगा, और मेरे लिए तो खैर होगा ही, क्योंकि जो चीज आपके लिए अच्छी होगी मित्रों वही मेरे लिए भी अच्छी हो सकती है। अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, बहुत कम वक्त बचा है, और वो है शंघाई सहयोग संगठन। मित्रों इसमें नाम है शंघाई। शंघाई आपको मालूम है कि चीन का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है शंघाई, लेकिन उसकी राजधानी नहीं है, याद रखिए राजधानी उसकी है बीजिंग। शंघाई सबसे बड़ी आबादी वाला शहर शंघाई। शंघाई सहयोग संगठन ये एक पैक्ट हुआ था, कह लीजिए शंघाई पैक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, 2001 में ये पैक्ट हुआ था। मैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं तो चीन तो इसके केंद्र में है ही है। आप सोच करके देखिए कि एक ऐसा संगठन है जिसका नाम उस देश की राजधानी पर है, तो स्पष्ट हो गया कि चीन तो इसमें प्रभावशाली सबसे ज्यादा होगा ही होगा, राइट। इसमें एक और देश है जो बहुत प्रभावशाली है, वो है रशिया, रूस। शुरू में ही रूस और चीन इसमें शामिल रहे हैं। याद रखिए कि भारत और पाकिस्तान भी अब इसके सदस्य बन गए हैं, और आपने न्यूज में सुना है, अखबारों में पढ़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसी की बैठक में शामिल होने के लिए चीन गए हैं, वो है अब वापस आ गए हैं इसी बैठक में। तो भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने हैं, 2017 में बिल्कुल नए मेंबर हैं, राइट। इसके और दूसरे कौन कौन से सदस्य हैं, देखिए अब सिविल सर्विस प्री में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको दूसरे सदस्य मालूम होने चाहिए, और आप बकायदे एटलस पर देखिए, ये वो देश मिलेंगे जो बिल्कुल चीन और रूस से सटे हुए हैं, उनकी सीमा उससे मिलती है। अब ठीक है, अब जैसे पाकिस्तान की सीमा एकदम नहीं मिलेगी, भारत की सीमा तो चीन से मिलती ही मिलती है, और इसमें एक और भी देश है उज्बेकिस्तान, वो थोड़ा सा आगे है, नहीं तो बाकी आप देखेंगे अभी मैं जो नाम बताऊंगा वो बिल्कुल रूस, कुछ रूस से मिलते हैं, कुछ चाइना से मिलते हैं, कुछ दोनों से सॉरी, और फिर आप पाएंगे कि ये देश आपके दिमाग में बैठ गए और आगे भी आपको काम आएंगे, क्योंकि ये मध्य एशिया के देश हैं जो रूस से अलग हुए थे और बीच बीच में इनकी चर्चा होती रहती है। चाइना, रसिया, दो देश अब आप एटलस पर आइडेंटिफाई कीजिए, ताजिकिस्तान देखिए एटलस पर देखिए, किर्गिस्तान उसको भी एटलस पर देखिए, कजाकिस्तान उसको भी एटलस पर देखिए, उज्बेकिस्तान इसको भी देखिए, इसके बाद भारत और पाकिस्तान ये इसके सदस्य हैं। जो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें आप फिर देखिए कि यूरोप और एशिया महाद्वीप के देश है, इसको कहा जाता है यूरेशिया, ये भी शब्द अब नया नया अखबार में, पहले भी बहुत चलता था लेकिन अभी अखबारों में ये शब्द खूब आने लगा है, इंडिपेंडेंट आर्टिकल भी आने लगे कि यूरेशिया की ताकत क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा आर्टिकल इस पर छपा था। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के इसमें देश है। इसकी जो ताकत है वो ये है कि देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का पहला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्षेत्रीय संगठन, ये वैश्विक संगठन नहीं है यूएनओ की तरह, क्षेत्रीय संगठन है, यही 7-8 देश जो मैंने आपको बताया इनका संगठन है, और दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला भी क्षेत्रीय संगठन है। अब चीन और आप सोच लीजिए कि भारत जिस संगठन में शामिल हो जाएं तो लगभग आधी आबादी, कह लीजिए 40-45% आबादी दुनिया की, तो इन दोनों की मिलकर के ही हो जाती है, और फिर आपने रशिया को भी मिला लिया, दूसरे देशों को मिला लिया, तो दुनिया की आधी जनसंख्या हो गई और यूरोप और एशिया का लगभग 60% भाग हो गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना शक्तिशाली संगठन होगा। मित्रों आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में बकायदे संगठनों के नाम डिटेल में नहीं दिए हैं, लेकिन दिया है कि संगठनों के बारे में भी आपको जानना है, जो महत्वपूर्ण संगठन है आपको उनकी भी जानकारी हासिल करनी है, और उस हिसाब से कह सकते हैं कि जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, और एग्जामिनेशन की दृष्टि से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत उसका मेंबर है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से जानना भी चाहिए। तो दोस्तों ये मुख्य विषय के बारे में कुछ बातें थी, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। मेल लिखने वाले सभी मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेल में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि मैं आपको फटाफट जवाब दे दूं। देखिए जब आप हिंदी भाषा लेते हैं तो क्लिष्ट शब्दों के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है, कोचिंग कंटिन्यू करूं या नहीं करूं ये पूरी तरह से आपकी अपनी आवश्यकता पर डिपेंड करती है। इसके लिए सीधा सीधा कोई उत्तर मित्रों नहीं दिया जा सकता। मैंने तीन योगा के नाम बताए थे इससे पहले, आपको मालूम होगा, भ्रामरी प्राणायाम और आपके अनुलोम विलोम और ओम का उच्चारण। इसके बारे में एक स्टूडेंट ने लिखा है कि इन तीनों योगाओं के यूट्यूब पर प्रोग्राम अवेलेबल हैं और रामदेव बाबा के अवेलेबल हैं, जो चाहे वो देख सकते हैं। एक स्टूडेंट का है, गुजराती में भाषा में नंबर तो कम नहीं मिलते, सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको नंबर कम या अधिक किसी भाषा की वजह से नहीं होते हैं, आप इसको गांठ बांध लीजिए। अंग्रेजी में भी अगर ज्यादा लड़के सेलेक्ट होते हैं तो इसलिए नहीं सेलेक्ट होते क्योंकि वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, नहीं तो सभी के सभी अंग्रेजी में ही सेलेक्ट हो जाते। भाषा का कोई रोल नहीं है। हाँ, अच्छी भाषा का रोल जरूर है। जो भी भाषा आप माध्यम के रूप में चुने उसकी अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्लास में आने से पहले एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है, जो चाहें आप करें। मित्रों, तो ये कुछ मेल के उत्तर थे। तो अब मैं उन अपने नौजवान साथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिनके नाम अभी मैं लेने जा रहा हूं, और उनके नाम हैं मयंक निगम इलाहाबाद, दुर्गेश्वरी त्रिपाठी, राजेश कुमार भोपाल, विकास कुमार यादव बघेला उत्तर प्रदेश, विपिन बिहारी पटेल धनबाद झारखंड से, पूर्वा मैत्री, सुशील बड़ियासर कात्यानी राजस्थान से, वीरेंद्र कुमार कान्हेर भैंसा उड़ीसा से, शिपला मोहाली पंजाब से, श्रीकांत चालेवर अमरेली गुजरात से, राहुल भारती फैजाबाद से और प्रेमदीप कुर्रे। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसके साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।